ओम शांति। आज भट्टी का आखिरी दिन है और हम उसके समापन सत्र में बैठे हैं। पिछले 3-4 दिनों से आप सब गहन तपस्या कर रहे हैं और आज 6:30 से 7:30 बजे तक एक बहुत सुंदर बाबा मिलन का कार्यक्रम हुआ। मैं पीछे बैठा था, देख रहा था, इतना सुंदर माहौल था इस हॉल का। ऐसा लग रहा था जैसे परम धाम उतर करके नीचे आ गया हो। आप सबको भी अच्छा लगा ये बाबा मिलन का कार्यक्रम? अच्छा लगा? थोड़ा लंबा हाथ उठाए। खाना तो खाया है ना आप लोगों ने? खाना अच्छा लग रहा है तो योग भी अच्छा, खाना भी अच्छा, यहाँ का वातावरण भी अच्छा, तो जहाँ सब कुछ अच्छा वहाँ तपस्या भी अच्छी। तो आप लोगों ने 3-4 दिन तक बहुत अच्छी तपस्या की और अब उस तपस्या में आप लोगों ने क्या अनुभव किया, कितनी गहराई में आप उतरे, थोड़ा सा हम अनुभवों की लेन देन करेंगे इस सत्र में। और इस भट्टी को और बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ सुझाव हो आपके पास, आपको लगता हो कि कुछ और चेंज करने से ये भट्टी और बेहतर की जा सकती है, तो आप सब अपना फीडबैक भी हमें जरूर देंगे। हम एक एक करके बुलाएंगे, सबको बुलाना संभव तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुभव तो सबको ही होता है और हर कोई सुनाना चाहता है, लेकिन आप में से कुछ भाई बहनों को हम यहाँ मंच पर बुलाएंगे और उनके अनुभवों को सुनने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले हमारे मंच की शोभा, हमारी 3 बड़ी बहनें जो इस भट्टी में आई हैं, आदरणीय अलका दीदी जी, आदरणीय सरोज दीदी जी और नेहा दीदी जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे श्रीकांत भाई जी, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं और इतना सफल रहता है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हम अनुभवों की लेन देन की इस प्रक्रिया को शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस जो भी अनुभव सुनाने के लिए भाई बहने यहां मंच पर आएंगे, उनसे ये अनुरोध रहेगा कि इन 3 दिनों की भट्टी में जो भी आपने अनुभव किया है उसको शेयर करना है। दूसरे तो बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, होंगे भी, परंतु हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम और अनुभवों को शेयर नहीं करेंगे। पर इन 3 दिनों में, 4 दिनों में आपने क्या अनुभव किया और यहां से क्या नई प्रेरणा आप लेकर के अपने लिए जा रहे हैं, उसको ही आप संक्षेप में 2 से 3 मिनट में सुनाएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच 2 भाई हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है इन साल 2 सालों में, उसे रिसर्च कहें, तो हम उन 2 भाइयों को भी आमंत्रित करेंगे। और उनसे हट करके 2 बहनें हैं जिनके पास कुछ सुंदर इस कोरोना काल का अनुभव है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, उनसे भी सुनेंगे और उसके बाद हम ये अनुभवों की लेन देन और फीडबैक का जो सेशन है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची है, एक कुमारी है जिसका नाम है सावी, जो नोएडा से आई है और 3री कक्षा में पढ़ती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करे, तो इस नन्ही बालिका को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कुमारी सावी आए और अपना हम सबको गीत सुनाए।
शांति। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा बहते पवन के झोंके, एहसास ये दिलाए संग संग हो हमारे, महसूस ये कराए महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से बाबा अब ही तो पल रहे हैं अब ही तो पल रहे हैं। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते हो तुम नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। थैंक यू। शांति।
बहुत 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 खूब सावी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस बच्ची का हौसला बुलंद करेंगे। बहुत सुंदर गीत गाया इस तीसरी कक्षा की नन्ही बालिका सावी ने। सावी नोएडा से हैं, बाबा की बच्ची हैं और रोज बाबा को याद करती हैं, राजयोग के अभ्यासी हैं। जिस समाज में इतने छोटे छोटे बच्चे राजयोग का अभ्यास करते हों, उस समाज को बेहतर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये बाबा की कमाल है। अभी हम अनुभवों की श्रृंखला को शुरू करें, उससे पहले मैं वो सारे नाम अनाउंस करता हूँ जिन्होंने अपना नाम दिया है इसके लिए। और वो सारे के सारे भाई बहने यदि बैक स्टेज आ जाएं तो समय बचेगा। कांतिलाल भाई, राजीव गुप्ता भाई, नीता बहन धर्मगांव, उर्मिला माता जी की जो बेटी है हैदराबाद से, वो भी आ जाएं। रवीश भाई मालेगांव नासिक, कृष्णा बेन आंध्र प्रदेश, वनुमला नासिक, बीके रमाबेन दिल्ली, नीला माता नैरोबी, डॉक्टर अर्पना बेन विलेपार्डे, कांता बेन उड़ीसा, बीके नेहा बेन नोएडा, बीके भोला भाई उड़ीसा और बीके कान्हा भाई उड़ीसा। ये सभी भाई बहने बैक स्टेज आ जाएं। और मैं अभी सबसे पहले कांतिलाल भाई को इनवाइट करता हूं मंच पर आए। कांतिलाल भाई कल्याण से हैं और आप जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। हम सब जानते हैं कि राजयोग का प्रभाव आत्माओं पर, मनुष्यों पर तो पड़ता ही है, परंतु जीव जंतुओं और वस्तुओं पर भी पड़ता है। और इस फील्ड में हमारे कांतिलाल भाई ने एक बहुत सुंदर रिसर्च किया है कि राज्यों का प्रभाव वस्तुओं पर कैसे पड़ता है। तो इन्होंने ईस्ट के ऊपर, ईस्ट आप सब जानते होंगे, ईस्ट के ऊपर इन्होंने राज्यों का प्रयोग किया। और उसका क्या रिजल्ट निकला, आइए हम सुनते हैं कांतिलाल भाई जी से।
ओम शांति। थैंक यू संजय भाई। यू ऑल नो अबाउट द ईस्ट, द कर्ड विच वी ईट कंटेंट ईस्ट, जो हम दही खाते उसमें ईस्ट होती है। वन फाइन मॉर्निंग वी डिड द रिसर्च एंड द टाइटल इज इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन ईस्ट कल्चर, ऑन ईस्ट कल्चर। द सैंपल यूज वॉज सैकोमाइसिस। इट वॉज डेज वेन द सिस्टर्स मेडिटेशन वॉज गोइंग ऑन इन ऑन द सेंटर।
अब लोग इंग्लिश में सहज समझ पा रहे हैं या हिंदी में सुनना चाहेंगे? अगर हिंदी में सुनाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
बहनों की भट्टी चालू थी 3 दिन की सेंटर पे, मौन भट्टी चालू थी और वातावरण काफी योगयुक्त था, तो हम भी उस भट्टी में गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस भट्टी का लाभ उठाया जाए। तो हमने ईस्ट के ग्रोथ के ऊपर उसका इफेक्ट देखना चाहा। आप उसके उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ऑल GLP अर्थात गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। ऑल रिसर्च प्रोटोकॉल हमने उसमें फॉलो किए। ईस्ट कल्चर जो लाया गया वो साइंटिफिक सप्लायर से, ऑथेंटिक सप्लायर से लाया गया। ईस्ट कल्चर को लाने के बाद उसको मीडिया पेप्टोन और डेक्सट्रोज की मीडिया 1% में एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डाइल्यूट करके उसको ग्रो कराया गया। उस कल्चर को टाइम एक्स में 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप रखा बाबा के कमरे में जहां पर सुबह से मेडिटेशन चालू था 8 o'clock से, हमने 4 o'clock हमारा एक्सपेरिमेंट शाम को शुरू किया। दूसरा सेट हमने रखा सेंटर के क्लास में जहां पर मुरली चलती है। तीसरा सेट हमने अपने लैबोरेटरी में ओवन के अंदर बंद करके रखा और उसके अंदर हमने लैपटॉप चालू रखा जिसके ऊपर ओम की ध्वनि कंटिन्यू चालू थी। और चौथा सेट हमने नेचर में रख दिया, कोई भी आके जाते उसको देखते रहेगा, इस तरीके से रख दिया। एज पर लिटरेचर ईस्ट 90 मिनट्स में डबल हो जाती है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, हर 90 मिनट में हो जाती है। तो हमने एक्सपेरिमेंट 180 मिनट्स, दैट इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2x डबल ग्रोथ के लिए किया। और इमीडिएटली उसको हमने, बिकॉज साइज होती है ईस्ट की 0.075 मिलीमीटर, तो न्यूवॉस चैम्बर जिसमें पैथोलॉजिस्ट जानते हैं, WBC काउंट जिसमें लिया जाता है, उसमें हमने उसका काउंट ले लिया। टू स्टॉप दैट ग्रोथ वी एड सर्टन सब्सटेंसेज सो दैट वी कैन अरेस्ट द ग्रोथ। और हमने काउंट ले लिया तो हमको ऐसे देखने में आया कि नॉर्मली जो ईस्ट 90 मिनट में डबल हो रहा है, वो ईस्ट जब हम मेडिटेशन में बैठे थे तब 76 मिनट में डबल हो रहा है, जो बाबा के कमरे में रखा था। जो ईस्ट को हमने ओम की ध्वनि में इनक्यूबेटर में बंद करके रखा था वो ईस्ट 90 मिनट में डबल हुआ। हमने आज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितना लाइट है, कितना साउंड डेसिबल है, कितना टेम्परेचर है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए और सबको NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट करके जब हमने देखा तो मेडिटेशन की ईस्ट ग्रो होने का टाइमिंग 76 मिनट्स है। और जो बाहर रखी थी जिसको आते जाते वाले ऑब्स्टेकल के रूप में, अरे ये क्या रखा है बीच में करके निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे थे, वो ईस्ट डबल होने में 99 मिनट लगे थे। सेम एक्सपेरिमेंट हम और दूसरे एनिमल पर अभी करने जा रहे हैं। हमारे कुछ कलीग है जो भारतीय विद्या भवन जहाँ रमेश भाई का सेंटर था, भवन सरदार इमल सोबानी कॉलेज वहां पर है, दे आर वर्किंग ऑन द पैरामोशियम कप्पा पार्टिकल्स। आप जानते हैं कप्पा पार्टिकल्स किलर पार्टिकल होते हैं और उस किलर पार्टिकल का इफेक्ट हम मेडिटेशन से कैसा कम कर सकते उसका हमने अभी प्रोटोकॉल बनाया है जो हम आपको अगली मीटिंग में सुनाएंगे। ओम शांति।
धन्यवाद कांतिलाल भाई जी, आपने एक बहुत सुंदर रिसर्च को अंजाम दिया। हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इस तरह के नए नए रिसर्च करते रहेंगे। इसके बाद हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मुंबई से राजीव गुप्ता भाई जी को। आप सबको पता होगा कि स्पार्क के द्वारा एक कोर्स डेवलप किया गया है, साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। बेसिकली ये 21 दिनों की एक इंटेंस भट्टी है जिसमें बहुत गहनता पूर्वक योग कराया जाता है। 21 दिनों तक तपस्या में बाबा के बच्चे बैठते हैं। तो विचार आया कि क्यों न ये जो साइंस ऑफ राजयोग मेडिटेशन भट्टी है, जो करने वाले भाई बहने हैं, इनके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो राजीव गुप्ता भाई जी ने इसी क्षेत्र में काम किया, हमारे डीआरडीओ के कुछ वैज्ञानिकों ने हमारे उन भाई बहनों पर रिसर्च किया जो राजयोगा साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन की भट्टी करते हैं, और करने के बाद एक बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिला। क्या है डिटेल उसका, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और क्या सुंदर परिणाम सामने आया है, इसके बारे में हम राजीव गुप्ता भाई जी से सुनेंगे। राजीव गुप्ता जी पिछले 25-26 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हैं और एक बहुत ही धारणा मुक्त बाबा के कुमार बच्चे हैं। आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, साथ ही साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आप सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट का काम भी करते हैं। तो आइए सुनते हैं राजीव गुप्ता भाई जी से।
ओम शांति। थैंक यू संजय भाई। संजय भाई ने ऑलरेडी बताया राजयोगा के बारे में। हम में से बहुत सारे भाई बहने हैं जो योग में स्ट्रगल करते हैं, कई वर्ष हम पुराने भी हो जाते हैं, फिर भी जैसे योग में बैठते हैं तो क्या होता है, नींद आना, सिर भारी हो जाना, संस्कार चेंज ना हो पाना। भले हम दूसरों को सुनाते हैं बट हमें मालूम रहता है कि क्या क्या चीजें फेस करते हैं। तो इन सब चीजों की ध्यान में रखते हुए अव्यक्त मुरलियों के आधार पर ये रिट्रीट तैयार की गई थी, और महाराष्ट्र भिवंडी में जो है बहुत सुंदर दीदी अलका दीदी का रिट्रीट सेंटर है, वहीं से हमने शुरुआत की थी। नेहा दीदी ने भी काफी अच्छे इसमें गाइडेंस दिए थे शुरू के दिनों में। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते थे कि 3-4 दिन कंप्लीट मौन, मोबाइल ले लिए जाते थे, कुछ भी बोलना नहीं है, और 2 दिन कहा जाता था कि आपको बाबा को फ्री कर देना है, बाबा को याद नहीं करना है। अभी आप सोच रहे हैं कि कौन सी बातें बता रहे हैं। तो बाबा को याद नहीं करना मतलब 2 दिन केवल आत्मा का प्रैक्टिस करना है, जैसे हमारी दादियों ने 14 वर्ष की भट्टी में किया था। और हमें से बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही होता है कि एक घंटा समय दिया जाता है तो मुश्किल से 2-5 मिनट आत्मा समझते हैं और तुरंत बाबा से मिलन मनाने जाते हैं, और जितनी स्पीड से जाते हैं वो मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये भट्टी है साइंस ऑफ राजयोगा नाम की, और दूसरी है सीक्रेट्स ऑफ राजयोगा जो क्वारंटाइन में जो है ऑनलाइन की गई थी। अभी काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि इसे ऑफलाइन भी किया जाए और 7 डेज का किया जाए, 7 डेज कंप्लीट मौन। श्रीकांत भाई भी इसमें गाइड करेंगे किस हिसाब से सेट किया जाएगा। 7 डेज कंप्लीट मौन, खाना भी कंट्रोल में, खाना पीना क्या है क्या नहीं खाना है, कंप्लीट मौन, और पूरा शेड्यूल सेट रहेगा। और एक और चीज कि इसमें उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन रिट्रीट किया हो, यहां ज्ञान की बातें कम होगी, केवल साधना साधना और साधना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में ऐसा हुआ कि जिन बहनों ने ऑलरेडी ऑनलाइन साइंस ऑफ राजयोगा किया था, करीबन 14-15 सेशंस होते हैं ऑनलाइन सेशंस, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, उसमें होमवर्क दिए जाते हैं, फॉलोअप किए जाते हैं, 3 से ज्यादा एब्सेंटीज होती है तो उन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाता है, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन ही होता है। तो इस प्रकार ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो सच में जो योग में काफी रुचि रखते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पुणे, दिल्ली और ऐसे कुछ एरियाज में काफी ये पॉपुलर हो रहा था, जिसमें हम कभी भट्टी नहीं कराते हैं, केवल वीडियो प्ले किए जाते हैं और लोग क्या करते हैं उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार ये रहा। तो दिल्ली में जब किया गया तो जैसे संजय भाई बता रहे थे 21 डेज का, तो बहनों का सबसे पहले ईईजी निकाला गया, और करीबन इसमें 2-3 दिन गए, डीआरडीओ से सुशील भाई ने भेजे थे, हैंड्स उनके भेजे थे जिन्होंने ईईजी भी निकाला, और 21 डेज सेशन कम, प्रैक्टिस ज्यादा, अभ्यास ज्यादा, और फिर लास्ट में उनका जो है ईईजी निकाला गया। तो इस प्रकार ये एनालिसिस जो है किया जा रहा है, और जो भी फीडबैक आता है ब्राह्मणों के लिए तो हमेशा पॉजिटिव है। तो जो अगर सीरियसली करना चाहते हैं तो ये 2 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, पहला है साइंस ऑफ राजयोगा और दूसरा एक सीक्रेट ऑफ राजयोगा उनके लिए है जिन्होंने नया नया बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने अभी अभी कोर्स किया या 1-2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, किसी किसी टॉपिक में उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमने बनाया था नॉन बीकेज के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें 80% बीकेज और 20% नॉन बीकेज, और वो भी अलग प्रभाव है। तो अगर आप इन सब से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्पार्क ऑफिस से संपर्क भी कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या डिटेलिंग रहेगी। और इसके संबंधित सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर का फॉर्म फिल करते ही हम क्लासिफाई कर देगा कि हमारे अंदर क्या, अगर पहले से एंजाइटी या डिप्रेशन कुछ भी सिम्टम्स है तो उनके लिए अलग प्रकार की भट्टी जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसमें पूरी एक टीम होती है जो ऑर्गेनाइज करती है, उद्घाटन दीदियों के द्वारा होता है, समापन में श्रीकांत भाई या जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो उस फीडबैक सेशन में जरूर आते हैं। तो इस प्रकार ये साइंस ऑफ राजयोगा की जो है भट्टी के बारे में शॉर्ट में हमने आपको जो है बताया, और क्वारंटाइन के 2 वर्षों में काफी लोगों ने जो है इसके बेनिफिट जो है प्राप्त किया है। तो आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की भट्टी करना चाहेंगे? तो जो सच में योग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप स्पार्क ऑफिस में श्रीकांत भाई को, संजय भाई को संपर्क कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पे भी जो है आपको मिल जाएगी। ओम शांति।
धन्यवाद राजीव भाई जी, सचमुच ये भट्टी बहुत अच्छी है। अगर हम सचमुच तपना चाहते हैं, पकना चाहते हैं, तो उसके लिए साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत सुंदर टूल है। आप सब अगर चाहें तो आप सभी अपने अपने स्थानों पर इस भट्टी को कर सकते हैं। अभी हम बुलाना चाहेंगे नीला बेन जी, जो धरन गांव महाराष्ट्र से हैं। ये पूरा 1.5 वर्ष कोरोना की चपेट में रहा है और संसार में एक अजीब सा भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। हम सबने देखा कि संसार की हालत कितनी बुरी हो चुकी थी, हर व्यक्ति भय में जी रहा था, सब पर इसका प्रभाव था, ब्राह्मणों पर भी और जो बाबा के बच्चे नहीं हैं उन पर भी। परंतु ऐसे में भी बाबा की याद, ये जो स्पार्क के द्वारा योग के प्रयोग कराए जाते हैं, जो योग के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, वो कितने हेल्पफुल साबित होते हैं। और कैसे, जैसे कि एक डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए और वो फिर उसको एक नया जीवन मिल जाए, ऐसा साबित हुआ बाबा का ये योग और जो प्रयोग चलता है स्पार्क के द्वारा। तो उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर अनुभव लेकर के धरन गांव की नीता बेन जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं उनके ही मुख से।
ओम शांति। विशेष हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि इस भट्टी में हमको आने का चांस मिला, क्योंकि 15 से 20 सितंबर 30 वर्ष के ऊपर की जो बहनें हैं सेंटर पर रहती, उनकी भट्टी थी नीचे शांतिवन में, लेकिन अचानक हमारी ट्रेन आई नहीं बारिश के कारण। हम फुल तैयारी में थे लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई और तुरंत हमको तनुजा बहन ने ये स्पार्क की भट्टी का सारा फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी भट्टी है। बस उसी दिन हमने ये फॉर्म भर दिया ऑनलाइन और इस भट्टी का टिकट निकाला। हमने कहा ये भट्टी नहीं तो इस भट्टी में हमको जरूर जाना है। तो बहुत बहुत बाप दादा को हम धन्यवाद दे रहे हैं और हमारे सारे जो भी स्पार्क के जो भाई जी, हमारी दीदियाँ, उन सभी को भी बहुत दिल से दुआएं निकल रही कि ऐसी भट्टी रखी है कि जो हम सब भरपूर हो रहे हैं। अभी जलगांव लोकल चैप्टर, उसके कोऑर्डिनेटर हमारी मीनाक्षी दीदी और अभी फिलहाल वर्षा बहन है, उसके पहले शांताराम भाई जी थे जो काफी सालों से इस स्पार्क विंग की बहुत अच्छी एक प्रैक्टिकल, उनके एक जीवन में योग के प्रयोग करते थे, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर थे। हम बहनों को बहुत उमंग उत्साह देते थे हमेशा, लेकिन अभी 3 मास पहले ही उनका भी कोरोना के कारण थोड़ा बीमारी आ गई थी, लेकिन अच्छे हो गए थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने के कारण उनको काफ़ी तकलीफ हुआ, उनकी जो मतलब शरीर के अंदर बहुत सारी तकलीफ हुई और 3 मास हो गए उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन उनकी जो शुभ भावना, शुभ कामना थी कि नहीं आप सब बहनें इस स्पार्क विंग के मेंबर बनो, स्पार्क विंग के लोकल चैप्टर अपने अपने स्थान पर खोलो, तो काफ़ी सालों से हमें वो बता रहे थे लेकिन रमेश भाई जी भाई साहब थे तभी हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 4-5 साल से हम इसके मेंबर बने और हमारे यहाँ करीबन 12 लोकल चैप्टर खुले हैं। उसके लिए हमारे श्रीकांत भाई जी, सूर्य भाई जी, रुपेश भाई जी, अंबिका दीदी भी आए थे और बहुत सुंदर इसके उद्घाटन भी हुए हमारे यहाँ। और करीबन अभी 160 मेंबर इसके लाइव मेंबर हैं और ये हर वर्ष जो भी प्रोजेक्टर होता है उस प्रोजेक्टर के ऊपर किताब बनाई जाती है। सारा ग्रुप मिलके बहुत अच्छे अच्छे किताब बनाते हैं, संकल्प शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना आदि आदि। अभी भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका किताब बनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो पिछले साल जो पहला साल गया उसमें तो कुछ इतना नहीं लगा, लेकिन पिछले साल जो कोरोना की लहर आई तो उसमें हम लोग माउंट अबू ही आए थे यहाँ। फरवरी मास में हम भट्टी के लिए सब भाई बहनों को लेकर आए, लेकिन यहाँ से गए, शिवरात्रि मनाई और उसी दिन मैसेज आया कि आप ये सब बंद करो क्लास, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे पेशेंट है, सब कॉलोनी में पेशेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे एक डॉक्टर साहब ने बोला कि दीदी आप क्लास क्यों खोला है, बंद करो, तो हमने बंद कर दिया। और वो सारा इतना फैला, इतना छोटा सा गांव 50,000 लोगों का, लेकिन रोज के 15-20 कभी 10 ऐसे पेशेंट शरीर छोड़ रहे थे। अपना सेंटर रोड टच है तो इतना सारे एम्बुलेंस के आवाज, और आपको पता है इतना जोर जोर से एम्बुलेंस के आवाज बजा के जाते थे, और रोज जैसे ही सुबह होती थी तो फोन आता था, दीदी आज अपने यहाँ इतने 10 लोगों ने शरीर छोड़ा, 15 लोगों ने शरीर छोड़ा। सारा भय का माहौल हो गया हमारे आसपास। फिर अचानक श्रीकांत भाई जी से हमारी बात होती रहती है, भाई साहब हमको बहुत मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो अचानक झूम पर मीटिंग और भट्टी जैसा प्रोग्राम आया तो हमको इतना अच्छा लगा, जैसे सभी इस भय के वातावरण में ऑक्सीजन मिला ऐसा लगा, कि ऐसे भय के वातावरण में हमको एक स्पार्क के तरफ से जो पहली मीटिंग और पहला जो हुआ झूम पर, तो हमने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे बाबा तो है, बाबा के हम योग के प्रयोग तो कर रहे थे हम 4 बहनें सुबह शाम, और मतलब ऐसे बहुत अच्छी योग भट्टियां तो कर रहे थे ऑनलाइन। लेकिन जब ये ऐसा हो रहा था और उसमें ऐसा होता था कि थोड़ा भी खांसी आई, थोड़ा भी कुछ हुआ तो संकल्प आता था, क्या अपने को कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है। देखो आप सभी को भी एक बार तो भी संकल्प आया होगा शायद कि हमें कोरोना तो नहीं होगा, है ना। तो हम कहते नहीं नहीं, निगेटिव नहीं संकल्प करना है, पॉजिटिव करना है। तो ऐसा इतना भय का वातावरण हो गया था और उसमें बॉडी जलाने को जगह नहीं थी। हमारे पास जो 3-4 स्मशान भूमि है तो लाइन लगी हुई थी और सारे मैसेज आते थे कि यहाँ बॉडी जलाने को भी जगह नहीं। तो जो खेती में बॉडियां जलाई जाती थी तो उसमें अपने बीके भाई बहन भी जा रहे थे, कुछ 7-8 बीके भाई बहनों ने भी शरीर छोड़ा। तो और भी हम लोगों को ऐसे लगा कि अभी क्लास का कौन जाता है, क्लास के कौन से भाई बहन का जाना होगा। हम सभी ब्राह्मणों को और सबको योगदान 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 दे रहे थे। हमारे पास मतलब 2 सेंटर है उस गांव में, तो उस सेंटर में एक बहन जो 35 साल से ज्ञान में चल रही थी, तो उसके भी क्लास के 5 स्टूडेंट ने शरीर छोड़ा, तो उसको कोरोना हो गया। तो इतनी डर गई, वो भी इतनी डर गई, उसका स्कोर कुछ भी नहीं था लेकिन हॉस्पिटल खुद ही एडमिट हो गई। और भय डर के कारण जैसे ही उसको थोड़ा दूसरी जगह लेके जा रहे थे नंदुरबार, तो रास्ते में उसका ऑक्सीजन का बॉटल खत्म हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो हमारी सारी जो भी बहनें थी जोन की, तो उनको और भी क्या हो गया, भय हो गया कि 25-30 साल में कोई बहन ने शरीर नहीं छोड़ा था और अचानक। और वो बहन मतलब अच्छी थी, शरीर से भी एकदम अच्छी थी, कोई बीमारियां नहीं थी, लेकिन देखो अचानक शरीर छोड़ गया। तो ऐसे वातावरण में हमें स्पार्क के तरफ से जब हमने कहा भाई साहब को कि प्लीज आप ऐसे, अंबिका दीदी को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ बहुत ऐसे ऐसे वातावरण है, आप हमको बीच बीच में मिलो और मिलते रहो, हमको मार्गदर्शन करते रहो, योग के प्रयोग तो हम करते ही हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया था पहले भी तो कोई भाई बहन नहीं आ रहे थे, योग तो कर रहे थे लेकिन मार्गदर्शन होता है तो और भी उसमें बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम ऐसे 21 दिन के योग के प्रयोग करते हैं, 75 घंटे की योग भट्टी करते, 108 घंटे की योग भट्टी करते हैं। तो ऐसे योग के प्रयोग तो बहुत अच्छे करते हैं, और साथ साथ अभी जो 4-5 दिन से क्लासेस हुए तो उसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बहुत मतलब विस्तार से जानने को मिला। ज्ञान तो सभी है, हम खुद दूसरों को सिखाते, लेकिन कुछ बातें जो होती है वो रियलाइज नहीं होता है, वो भी रियलाइज हुआ। मंजू बहन का भी क्लास इतना अच्छा हुआ, जैसे हम कोई भी मशीन के पार्ट खोल के रखते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो उस क्लास में तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई पार्ट एक एक पार्ट खोल के रख दिया, तो ऐसे अनुभव हो रहा था। और भाई साहब जो सूरज भाई जी का क्लासेस के, तो हम योग के प्रयोग बहुत करते रहते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक, तो ऐसे बहुत सुंदर अनुभव आते रहते हैं। और आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे योग के प्रयोग करते रहेंगे। और भी रिक्वेस्ट हमने भाई साहब को किया था कि सिर्फ टीचर्स बहनों को, हमारे एक टीचर बहनों के लिए योग भट्टी रखी जाए, तो उसमें केवल हम मौन और बहुत अच्छी गहरी तपस्या करने चाहते। और साथ साथ वर्तमान समय जो हमारे उधर महाराष्ट्र में बारिश बहुत चल रही, तो सारे किसान बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, सारे खेती में पानी पानी है, उनका जितना भी बीज डाला गया वो सारा खत्म हो गया, तो उनके कर्जा इतना है, गरीबी की परिस्थिति है। तो ऐसे समय किसानों के लिए भी हम सभी योगदान करें, क्योंकि हमारे उधर जो भी सेंटर्स है सारे किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम उनको बड़े बड़े रूप से योग के प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो हम चाहते हैं उनके लिए भी विशेष योग करेंगे।
धन्यवाद नीता बहन जी, जोरदार, भले आज आप ताली बजा सकते हैं। तो हमने नीता बहन जी का अनुभव सुना, कैसे बाबा का ज्ञान और योग विषम परिस्थितियों में भी हमारी मदद करता है, हमारी मानसिक स्थिरता को बना करके रखता है। तो निश्चित रूप से हम सब योग तो करेंगे ही, सबके लिए, केवल किसानों के लिए क्या, बाबा के बच्चे सारे संसार के लिए योग करते हैं, और हम सबको योगदान दें ताकि ये सारा संसार सुखी बने, शांति से रहे और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर पाए। धन्यवाद नीता बहन जी। हैदराबाद की एक माता जी हैं, उर्मिला माता जी, इनका भी योग का एक बहुत सुंदर अनुभव है, योग के प्रयोग का। माता जी को कैंसर हुआ था और कैसे कैंसर की परिस्थिति से उभर करके वो बाहर आई और आज संपूर्ण स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स ने जिन्हें पूरी तरह से जवाब दे दिया था, परंतु आज वो कैंसर से लड़ करके कैंसर जैसी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त किया, योग के बल से, योग के प्रयोग से। उनका ही एक संक्षिप्त अनुभव लेकर के उनकी बेटी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम अनुरोध करते हैं कि संक्षेप में आप माता जी का अनुभव सुनाएं।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। मेरी लौकिक माता जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी बाबा को, सारे मधुबन निवासियों को, मंच पर उपस्थित सभी दीदियों को, भाइयों को, कि इतना सुंदर प्रोग्राम रचा हम सभी के लिए ये स्पार्क का। वैसे मेरा तो पहला अनुभव है, मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरी लौकिक माता जी नियरली 15 ईयर्स के ऊपर से शी इज अ वेरी एक्टिव मेंबर एंड ऑल्सो अ वेरी स्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ स्पार्क। उन्होंने आज तक कोई स्पार्क की मीटिंग या यहाँ के इंस्ट्रक्शंस कोई भी मिस नहीं किए, तो मेरा तो पहला अनुभव है। तो ये भट्टी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और मेरा यहाँ आने का जो कारण है, क्योंकि स्पार्क ने जो कमाल कर दिखाई है वो एक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। 2020 की बात है, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, उस समय उसके बिल्कुल एक महीने पहले फरवरी में उनको एब्डोमेन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, और जब डिटेक्ट हुआ था तो उसका साइज था 14 सेंटीमीटर्स, विच इज नॉट अ स्मॉल साइज, वेरी ह्यूज साइज। सारे डॉक्टर्स पैनिक हो गए थे और परेशान हो गए थे कि आप, इतना बड़ा ट्यूमर आपके एब्डोमेन में है, हाउ आर यू सर्वाइविंग। तो उन्होंने इमीडिएटली सर्जरी के लिए सजेस्ट किया. वी प्रोसीडेड फॉर द सर्जरी. अपोलो हॉस्पिटल की गायनो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर डायना ने सर्जरी के लिए प्रोसीड किया. तो बिफोर सर्जरी हम थोड़ा पैनिक थे, लेकिन शी वॉज वेरी बहुत ईजी. उसने कहा कि हमारे लिए सिर्फ एक केक को जैसे कट करते हैं बस उसी समान है, आप डरो नहीं. लेकिन जैसे ही सर्जरी रूम में गए, सर्जरी स्टार्ट हुआ, जैसे ही उन्होंने ओपन किया बॉडी को, शी वॉज जस्ट पैनिक, क्योंकि वो टोटली रप्चर हो चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं. और वो सारा पसीना हो चुकी थी. हमको नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है. हमको कहा गया था कि 4 to 5 hours में सर्जरी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नियरली 7 hours हो चुके थे. उनकी टीम का कोई मेंबर बाहर नहीं आ रहा था, कोई मैसेज नहीं आ रहा था. और जैसे ही 7 to 8 hours का सर्जरी फिनिश हुआ, डॉक्टर आई, वो सारा पसीने से लथपथ थी और उसके हाथ कांप रहे थे. एंड वो आकर हमको सारा डिटेल शेयर करी कि क्या हुआ. और उसने कहा कि आज ये जो केस हुआ है, लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्जरी किसने की और ये केस सक्सेसफुल हुआ कैसे. मेरी टीम सारी परेशान है. जब सर्जरी स्टार्ट हो रही थी तो हमारी एक दीदी मधुबन में आई हुई थी. तो मैंने दीदी को फोन किया था तो दीदी शांति स्तंभ के पास बैठकर बाबा को योग कर रही थी. और मैंने कहा दीदी जब तक सर्जरी फिनिश न हुए आप प्लीज योग में रहना. और उन्होंने बाबा को यही कहा, बाबा आप रूहानी सर्जन हो, आप ही जाना और उस माता की सर्जरी करना. तो वो केस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था. नियरली 3 units बॉटल उनको सर्जरी के दौरान ब्लड चढ़ाया गया था, जो एक छोटी बात नहीं है. एंड दैट टू एट द एज ऑफ 68-69 ईयर्स. और फिर डॉक्टर ने जब आकर हमसे सारा कुछ शेयर किया तो डॉक्टर का कहना था कि मेरी जगह अगर कोई भी दूसरा डॉक्टर होता वो बिल्कुल प्रोसीड नहीं होता था, आपको स्टिच करके वापस दे देता था कि वी कैन नॉट गो फॉर इट, यू गो फॉर समवेयर एल्स. एंड वो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं मैं कैसे प्रोसीड हो गई. एंड मुझे अभी भी आश्चर्य लग रहा है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई कैसे. और ये स्वयं डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि कोई अद्भुत शक्ति ने ही काम किया और वो बाबा ने खुद आकर सर्जरी अटेंड की थी. उसके बाद क्योंकि उस माता की लगन बाबा के साथ इतनी थी कि जब भी वो डिस्चार्ज होकर, एंड डॉक्टर ने कहा शी इज एब्सोल्युटली फाइन, ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कुछ होने पर हाउ शी इज फाइन. और जब केस पूरा हुआ, रूम में शिफ्ट हुए, तो वो माता जी को एक ही लगन है कि मुझे स्पार्क का चार्ट भरना है. हमने बोला अभी थोड़ा रुक जाओ, आप बाबा को याद करो, जैसे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे. हर चीज में शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे ये करना ही है, मुझे अमृत वेला करना ही है. और जैसे ही हमने डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे, स्टिचेस भी ओपन नहीं किए थे, सबसे पहले स्नान करके उन्होंने बाबा को भोग लगाया, जिसके लिए हमने मना किया लेकिन वो नहीं माने. और 15 days के बाद वो अमृत वेला हर रोज उठते हैं, अपने हाथ से भोग बनाते हैं, स्नान करके बाबा को भोग लगाते हैं. इसके बाद उनका काफी ट्रीटमेंट हुआ था कीमो का. उस दौरान भी काफी चैलेंजेस आए थे, डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे कि ये एज में ये ट्रीटमेंट जाना, इट्स नॉट सो इजी. लेकिन जैसे एक एक कदम हम आगे बढ़ते थे, हमें प्रत्यक्ष बाबा साथ में है ये अनुभव हुआ. एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्पार्क. यहाँ पर जो बूस्टिंग एनर्जी मिली, यहाँ जो पुरुषार्थ कराया जाता है, जिससे वो आत्मा का पुरुषार्थ खड़ा हुआ और आगे ऐसे चलते गए. अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. जैसे ही ट्रीटमेंट सारा खत्म हुआ, फिर हमने रिपोर्ट्स करवाया. और कमाल की बात यह है, रिपोर्ट्स कराने पर हम सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट. रिपोर्ट में फिर डिटेक्ट हुआ कि वो ट्यूमर फिर से ग्रो हो रहा है. और सारे डॉक्टर्स ने, सारे हॉस्पिटल्स में बोर्ड मीटिंग रखाई गई. बहुत क्रिटिकल केस, डॉक्टर्स का कहना था ये केस बहुत रेयर है, लिटरेचर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू ओनली हैव टू गो फॉर अ सेकेंड सर्जरी, आप सर्जरी के लिए रेडी हो जाओ. हमने बस बाबा के पास गए और बाबा के सामने बात रखी, बाबा हम सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, आपको ही कुछ करना होगा. तो हमने डॉक्टर से जाके पूछा, अभी आप हमें कितना टाइम दे सकते हो, 1 महीना 2 महीना या इमीडिएटली करना है? तो डॉक्टर ने कहा 3 months का टाइम हम आपको दे सकते हैं.
तो
थोड़ा संक्षेप में करें बहन, टाइम बहुत हो रहा है और भी लोग
जी। तो 3 मंथ्स हमने एक ही समय पर, उन्होंने वो माता जी ने एक ही समय पर एक ही जगह बैठकर एक ही संकल्प लेकर योग किया, और क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके कोई दवा नहीं थी तो बाबा को जो भोग लगाते थे, हमने कहा बाबा साइंस में अगर इतनी शक्ति है तो साइलेंस में आपकी शक्ति के आगे तो हर शक्ति इतनी नहीं है। तो वो भोग दवाई रूप में काम की, और वापस से जब रिपोर्ट्स निकाला तो सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई। डॉक्टर्स भी पैनिक हो गए कि पिछली रिपोर्ट्स ऐसी आई, ये रिपोर्ट्स चेंज कैसे हो गई। इनफैक्ट 1 ईयर से गैल ब्लैडर में 8 mm का स्टोन डिटेक्ट हो रहा था, 3 मंथ्स के बाद वो स्टोन भी गायब हो गया, डॉक्टर्स ढूंढते रह गए। तो ये सारा जो कुछ अनुभव हुआ ये सिर्फ और सिर्फ स्पार्क से उनको जो बूस्टिंग एनर्जी मिली उसकी है। तो आई रियली थैंक एवरीवन, ईच एंड एवरी टीम ऑफ स्पार्क, सभी जो हमारे ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं हमको इतना आगे बढ़ाने के लिए, एंड थैंक्स फॉर गिविंग सेकेंड बर्थ टू हर। ओम शांति।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी माता जी को बहुत बहुत ये नया जीवन, माता जी को मुबारक हो। और माता जी दे रहे, ओके माता जी आपको बहुत सारी दुआएं। हाँ, एक बार खड़े होकर के सबको हाथ हिला दीजिए। आपको नए जीवन की ढेर सारी बधाई। अब आप बाबा की खूब सारी सेवाएं करें और योग का प्रयोग ऐसे ही करते रहें, स्पार्क का और बाबा का नाम रोशन करते रहें। तो यहाँ पर हमने देखा कि योग में कितनी शक्ति है, जहां पर विज्ञान भी हार मान जाता है वहां पर हमारे लोगों की दुआएं, बाबा की याद, हमारी तपस्या काम आती है। तो यहाँ पर ये अनुभव समाप्त होता है। अभी हम उन भाई बहनों को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस योग भट्टी के दौरान कुछ अच्छे अनुभव किए हैं। और आपका नाम?
कृष्णा
बहन। तो अभी हमारे बीच कृष्णा बहन हैं, आप आंध्र प्रदेश से हैं। कृष्णा बहन आप आंध्र प्रदेश
जी,
तो आप अनुभव सुनाएंगे। अनुरोध करते हैं कि बहुत संक्षेप में इस भट्टी में आपको क्या अनुभव हुआ और आप यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं आगे के लिए, बस यही सुनाए।
ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक तो समय को समीप लाना है और अचानक का पार्ट पक्का करना है, एवर रेडी। तो इस बार स्पार्क के द्वारा जो हमें ये पार्ट है बहुत सहज रीति से अनुभव हुआ, क्योंकि पहले तो 4 महीने पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आता था, फिर इनविटेशन आता था कि आप आए, लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि जल्दी जल्दी ही सब कुछ डिसाइड हुआ। और अभी वर्तमान समय हम लोग आंध्र में पुट्टपर्ती, एक ऐसी जगह है जहाँ सत्य साई बाबा का है, तो वहां से पहले तो हमने सोचा कि भाई जाना है तो कैसे, क्योंकि अभी भी कोरोना का बहुत कुछ ऐसे पूरा क्लियरेंस नहीं है। तो बाबा जैसे कि एवर रेडी का पार्ट पक्का कराते हैं, तो यहाँ आने के बाद जो भी क्लासेस हुई तो सभी में हमें एक अनोखा अनुभव हुआ, और उसमें भी आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। शाम को जब हम बैठे थे तो लग रहा था कि सचमुच में बाप दादा आए हैं और हम सबको जो है दृष्टि दे रहे हैं, और हम सबके सामने जैसे कि बाबा अपने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो स्पार्क की हर जो गतिविधि है बहुत ही लाभदायक है हमारे आगे के जीवन के लिए। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं सभी हमें उन्नति के मार्ग के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दिनचर्या भी बहुत हमारी जो है वो एक्यूरेट रही, टाइम पर ही सारे सेशन शुरू होते थे। तो हर तरह से देखें तो हमें जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट रूप में बहुत ही जो है उन्नति के लिए मतलब खुराक मिल गई आगे के लिए। नेक्स्ट मीटिंग कब होता है क्या, वो तो हम बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट से हमने ये देखा कि हमें उन्नति, यानी किस प्रकार से जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कार्य व्यवहार में रहता हो, लेकिन वो कैसे उन्नति कर सकते हैं, स्पार्क हमें वो सिखाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हैं हम सभी, तो अपने अपने घरों में घर को घर ना समझ के लैब समझ के ज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं। और मैं एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम लोग जैसे आत्मा की भोजन की तो बहुत ज्यादा हमें तृप्ति से वो हो जाता है, तो शरीर का भोजन भी यदि जो है लाइट भोजन दिया जाए, क्योंकि बहुत हैवी भोजन तो क्योंकि एक दिन हमें रिट्रीट दे दें अच्छा सा, बाकी टाइम में जो है वो भोजन जो है बिल्कुल ऐसा दें जो हम योग करने में हर हल्के भी रहें और हर प्रकार से जो है वो।
धन्यवाद कृष्णा बहन जी।
ओम शांति।
भोजन की चॉइस तो आपकी है, पहले दिन भी बताया गया था, आप जो मर्जी उतना ही खाएं। आप बाबा के घर में आए हैं, हम तो आपकी खातिरी जरूर करेंगे, परंतु आप हल्का भोजन खाएं, ये आपकी चॉइस है। धन्यवाद। अभी हम नासिक से अनिल भाई जी को बुलाना चाहेंगे। अनिल भाई जी आए और अपना अनुभव शेयर करें। नहीं है, अच्छा अनिल भाई जी नहीं है। अभी प्रतिभा बहन, शिमला से प्रतिभा बहन है, शिमला से प्रतिभा बहन, वो भी नहीं है। भावना बहन डेली, भावना बहन डेली आप आ जाएं। उसके बाद डॉक्टर अल्पा, डॉक्टर अल्पा हैं, वो तैयार रहें जी।
ओम शांति। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इधर मधुबन का, तो मेरे को ज्ञान में चलते अभी 1.5 ईयर ही हुआ है। पहले मैं, मेरी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जॉइंट फैमिलीज में, तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी। तो 1.5 ईयर तो मैंने डिप्रेशन की पिल्स वगैरह ली हैं, तो एक दिन भी पिल नहीं लेती थी तो आई स्टार्टेड शिवरिंग, इतना एडिक्शन हो गया था मुझे उन पिल्स का। तो मेरी लौकिक माता जो है वो मेरे को कहती थी कि तुम ना सिस्टर शिवानी का सुना करो, वो खुद सुनती थी, ज्ञान में नहीं चलती है लेकिन सुनती थी वो। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उनकी सुन ली क्लास, तो वो मेरे को लगा कि एकदम से, मतलब मेरे को लगा कि सब चेंज ही हो गया मेरे लिए, कि मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया सबके लिए, कि मेरे को किसको कैसे देखना है। मतलब जिसके साथ मेरे क्लैशेज होते थे उनके साथ ही मेरा इतना अच्छा रिलेशन बनना शुरू हो गया कि बस मुझे लगता कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। और फिर जैसे सिस्टर शिवानी बताती थी, मैं थोड़ी बहुत 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लेती थी। मतलब मेडिटेशन भी ऐसी कि मेरा तुरंत ध्यान जैसे बुद्धि से खींच लेता है ना कोई, उस टाइप से था कि, और मैं मतलब, और फिर मेरे को संकल्प आया कि मैंने मेडिसिन अब छोड़नी है। तो अबाउट 1.5 मंथ में मैंने धीरे धीरे वो मेडिसिन मतलब छोड़ दी। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई उसके बाद, मेरे को लगा कि बस डॉक्टर के पास जाऊंगी उसने छोड़ने नहीं देनी, तो मैंने धीरे धीरे वो मेडिसिन छोड़ दी और मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई। मेरे जो हस्बैंड है वो, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो मतलब इतना मेडिटेशन उनका इतना फर्क पड़ा कि वो भी धीरे धीरे शांत होने शुरू हो गए। पता नहीं कैसे चेंज आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत शांत हो गए उसके बाद। और फिर अभी 1.5 ईयर से फिर मैंने सेंटर पे जाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा मतलब इसमें नहीं थे कि मैं जाऊँ उधर, लेकिन पता नहीं क्या संकल्प आया कि नहीं मेरे को जाना ही है, तो मैंने सेंटर पे जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैं भक्ति बहुत करती थी शिव जी की, मतलब बहुत व्रत रखती थी।
इसमें भट्टी से रिलेटेड अनुभव सुनाना था, तो हम सोच रहे थे कि अगर भट्टी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो सुनाएं, फिर ये सब बातें तो लंबी हो जाती हैं।
अभी आज का मैं सुनाती हूँ, जैसे आज
थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में।
हाँ जी ठीक है। मेरी तबीयत जैसे आज ठीक नहीं थी, स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, तो फीवरिश भी हो रहा था, तो सुबह से मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी, सिर्फ एक आधी क्लास अटेंड की थी। तो जैसे शाम को मैंने, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा न्यूमा शाम है, तो मुझे लग रहा था मुझे अटेंड करना चाहिए कि, तो मैंने किसी तरह से अपने मतलब ड्रैग जैसे करना होता है ना शरीर को, वैसे उठी और आई, तो मुझे लग रहा था मुझे कोई लेके ही जा रहा है ड्रैग करके, मैं खुद से नहीं जा रही। और इधर आके बैठी तो बड़ा अच्छा योग भी लग गया, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे में इतनी पावरफुल महसूस हो रहा है मुझे, कि मुझे लग रहा है मैं 60-70% ठीक हो गई हूँ।
बढ़िया, धन्यवाद बहन का। बहन स्वस्थ हो गई है, आगे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, ये हम सबकी सुभावना शुभकामना है। इसके बाद हम विले पार्ले से डॉक्टर अल्पना बहन को बुलाना चाहेंगे। कृपया आएं और संक्षेप में भट्टी से रिलेटेड अनुभव सुनाएं। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम एक आध और लोगों को सुन पाएंगे। उसके बाद जो भी भाई बहनें बच जाएंगे, कल सुबह क्लास के बाद निर्मला दीदी के सामने कुछ लोग अनुभव सुनाते हैं, तो उस समय आप अपना अनुभव सुना सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक दो लोगों को और ही ले पाएंगे, क्योंकि समय हो रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। वैसे तो 50 वर्षों से मधुबन आते रहे हैं, लेकिन स्पार्क की भट्टी में पहली बार मधुबन की भट्टी की 5 वर्ष से भिवंडी में करते रहे, तो पता था कि अनोखी होती है स्पार्क की भट्टी। तो विशेष हर सेशन का कुछ कुछ अनुभव रहा। जैसे भट्टी की शुरुआत अमृत वेले से हुई, तो ज्ञान सूर्य के मास्टर सूर्य रत्न सूरज भाई ने अमृत मुहूर्त को जैसे मंगल मुहूर्त बना दिया। मुरलीधर शिव बाबा की मधुर मुरली निर्मल आश्रम दीदी जी के मुखारविंद से ऐसी चलती थी जैसे ज्ञान गंगा की अविरत शीतल धारा थी। शिल्पा बहन ने शिल्पकार बनकर अव्यक्त मूर्त तैयार करना शुरू किया, तो मंजू बहन ने ठोक ठोक कर फिनिशिंग टच दिया। सरोज बहन ने ज्ञान सरोवर में कमल सा न्यारा बनाया, तो रामनाथ भाई ने परमात्मा राम तक पहुंचने का सीधा मार्ग बताया। और ऐसे अशरीरी बनते ही श्रेष्ठ स्वमान के हम अधिकारी हो गए। सुरेश भाई ने स्मृति का तिलक दिया, तो उषा बहन ने फरिश्तों की चमकीली ड्रेस से सजा दिया। तो महेश भाई ने साकार बाबा को साकार करते हुए निर्संकल्प निर्विकल्प शुभ संकल्प समाधि का मर्म समझाया। सविता बहन अमृत अंतर्मुखता की गुफा में ले गए, तो श्रीकांत भाई ने परमधाम को ही नीचे अनुभव कराया और चलते चलते बाबा की सर्व संबंधों के प्यार की अधिकारी आत्मा बन गए। नेहा बहन ने बिंदु बनाकर सिंधु से मिलाया, तो हमारी निर्मला दीदी जी ने सर्व संबंधों के सार का अनुभव कराया। सुमन बहन ने पूर्वजों की स्मृति दिलाते हुए पूर्वज बनने की विशेषताओं को कैसे धारण करें ये सिखाया। आत्म प्रकाश भाई ने आत्मा को रोशन किया, और अंत में तो ज्ञान सूर्य की रोशनी ने सभी स्पार्कलर्स को अपने जैसा मास्टर सूर्य बना दिया। बाप दादा दादी दीदी श्रीकांत भाई अंबिका दीदी अलका दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भट्टी के आयोजन के लिए। और हम सभी स्पार्कलर्स ये संकल्प करते हैं कि हम सदा ही सिरीन प्योर अंतर्मुख रॉयल और काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत खूब डॉक्टर अल्पा बेन, आपने अपने अनुभव को एक कविता का बहुत सुंदर कविता का रूप दे दिया, धन्यवाद। अभी हम नासिक से वनमाला बहन को आमंत्रित करते हैं, कृपया आएं और आकर के अपना अनुभव सुनाएं। इसके बाद शिमला से प्रतिभा बहन तैयार रहें, अभी वनमाला बहन नासिक।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले देती हूँ, क्योंकि यहाँ आने का बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, और ज़्यादा तो बोलने के लिए समय नहीं है, और वो सही भी है, तो खाली भट्टी के बारे में ही मैं बोलूँगी। पहले तो ज्ञान सरोवर में हम 21 साल के ज्ञान में होते हुए भी कभी भी रहने को हमें यहाँ नहीं मिला। शायद हमें ऐसा लगता था ये हमारे लिए है क्या नहीं, यानी देख के चले जाते थे गड़बड़ में, लेकिन यहाँ तो बहुत 5-6 दिन हम बहुत आराम से अच्छी तरह से रहे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। इसीलिए सभी ज्ञान सरोवर के भाई और ये स्पार्क के लिए यहाँ रखा, इसीलिए इनका कोई भी धन्यवाद। पहले तो हमारी सुबह अमृत वेला डॉक्टर अपने सूरज भाई के साथ होती थी, जैसे फरिश्ता ऊपर से नीचे आ गया और हमें भी फरिश्ता बनाकर उड़ाकर ले चला। बाद में मधुर मुरली के लिए हमारे आदरणीय निर्मला बहन जी, उनको तो सब जानते हैं, हम टीवी पर देखते थे, अभी सम्मुख बैठकर सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सुमन बहन जी
अनुभव कुछ हो अच्छा, तो वो शेयर करें, हाँ, ये सब हम जानते ही हैं।
बराबर है। पहले दिन जो अशरीरीपन का अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। सभी अभी नाम नहीं लेने का है तो ऐसा लगता है खाली नाम तो भी लेना चाहिए, यानी नाम लेने से वो सामने ज्ञान आ जाता है उनका, तो सभी के लिए अच्छा। अशरीरीपन का सही में बहुत अनुभव आया और हम ये ज्ञान सरोवर छोड़ के भी कहीं गए भी नहीं, तो ये अशरीरीपन या बाद में जो 3M का भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम मन का मौन, मुख का मौन करते हैं, लेकिन मोबाइल का मौन कभी भी हमने रखा नहीं था सच में, अभी हम अच्छी तरह से कर सके। सरोज बहन है, अलका बहन, और खास मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि हम 2 साल से यानी इनके साथ जुड़े रहे, किस ना किस योग भट्टी में। अभी कहने का मतलब है ये नेहा बहन को तो हम लॉकडाउन में इतना उनके साथ गामदेवी सेंटर से जुड़े रहे और वो ज्ञान योग का प्रयोग और उनका जो शैली है योग लेने का, प्रयोग करने का, तो बहुत अच्छी तरह से हमें आगे लेकर गया। तो ये सब ये काम में आ गया ये योग भट्टी से, तो हमें और ये स्पार्क के बारे में बहुत अच्छा हमारा जो संकल्पना स्पष्ट हो गई कि ये दूसरा तीसरा और कुछ रहा ही नहीं है। हम जो आज तक ज्ञान तो बहुत लिया है लेकिन योग का प्रयोग कैसे करना ये हम इससे सीख गए। अब श्रीकांत भाई है और खास मुझे रुपेश भाई जी के लिए भी बोलना है कि रुपेश भाई का जो सूत्र संचालन है तो हम तो टीवी पे देखते ही थे, लेकिन हम उनको मिलकर रास्ते में उनके बहुत घेराव डाला सभी माताओं ने, उनके साथ फोटो भी निकाला, तो ये सब उनका जो है वो सभी जानते हैं, वो क्या बोलूं मैं उनके बारे में
जी, नहीं, तो नहीं, बहुत आपको रुपेश भाई को हम पार्सल कर देंगे आपके पास।
हाँ, दूसरे दिन हमें सर्व संबंधों की अनुभूति तो आज भी कराई और बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ संबंध जुड़ा गए।
जी,
तो
जी, बस बहुत हो गया, इतना ही बहुत है।
हाँ,
रुपेश भाई का एक पैकेट बनाएंगे आपको दे देंगे, आप ले जाना।
थैंक यू।
और आपका मोबाइल भी हम रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल का मौन रखना जरूरी है।
धन्यवाद। एक लाइन में मैं ये विराम दे रही हूँ मेरे शब्दों को, बहुत ज्यादा बोलने का था लेकिन शायद मौन उसमें भी रखना है, बोलने में भी
जो बोलना है वो
बराबर है। हाँ, तो एक ही गीत की एक लाइन बोलूंगी। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, हे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया दीदी, आपका शुक्रिया सभी भाइयों का शुक्रिया।
माता जी के लिए जोरदार ताली,
शांति।
माता जी वन माला नहीं है, हृदय माला है, और हृदय माला है। और रुपेश भाई उधर बैठे हैं, एक फोटो खिंचवा लीजिए। और अभी इसके बाद अंत में हम प्रतिभा बहन जी जो कि शिमला से हैं, आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया अपना अनुभव सुनाएं।
ओम शांति। आदरणीय मंचा सेन दीदी जी, भाई जी और संजय भाई जी और हमारे समस्त भाई और बहनों, आज भट्टी में जब भी स्पार्क भट्टी में आते हैं तकरीबन सारी ही भट्टियों में आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, तो इस बार भी अनुभव हुआ और आज ही हुआ, तो फिर मन में आया कि चलो शेयर करते हैं आपके सामने। जब मैं पहली बार यहाँ ब्रीफ में ही करेंगे, टाइम नहीं है एक्चुअली, जब मैं पहली बार मधुबन में बाबा मिलन के लिए आई थी तो जिस दिन बाबा मिलन का दिन था 30 नवम्बर, अमृतवेली बाबा ने टच किया कि तुम मेरी सजनी हो, तो बड़ा नशा चढ़ गया, भगवान ने ऐसे कहा मेरे लिए, तो पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा और बाबा मिलन भी वंडरफुल हुआ। और तीसरे बाबा मिलन में आए तो बाबा ने अनुभव कैसे डायमंड स्टेज पर, डायमंड हॉल में स्टेज पर बाबा बैठे हैं और बाबा का अचानक रूप परिवर्तन हो गया, जैसे एक साजन होता है ना, दूल्हा साजन बनकर आता है, बाबा का चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया। और फिर बाबा ने ऐसे करके देखा मेरी तरफ, तो मुझे लगा कि बाबा इधर देख रहे हैं मेरी तरफ, तो ये भी अनुभव था। और आज का कि जब दीदी क्लास करा रही थी, निर्मला दीदी जी, तो उसमें सर्व संबंधों के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें भी सारे संबंध के बाद जब साजन का संबंध आया तो बाबा ने उस समय भी साजन के संबंध का बहुत ब्यूटीफुल अनुभव कराया कि जो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैं इतनी खुश हो गई और मंत्रमुग्ध हो गई कि उसके बाद कौन सी क्लास थी वो भी मुझे पता नहीं। मैं बाहर जाकर झूले में बैठी हूँ और मैं कम से कम एक दो घंटे तक उसी को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा अनुभव बाबा ने मुझे कराया। और उसके बाद शाम को जब हम इवनिंग में बैठे हुए थे यहाँ पर, तो जब बाबा मिलन का समय था तो एक घंटा जो बाबा ने जो भी ड्रिल कराई, बाबा ने हमें दृष्टि दी, तो उसमें भी एक घंटे में वही सेम अनुभव हुआ जो बाबा डायमंड हॉल में बाबा मिलन में हमें होता है। बाबा ने तीन बार दृष्टि दी और एकदम इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि जिसमें हम खो गए। तो इट वॉज लाइक अ बाबा मिलन, नॉट ओनली नुआ शाम योग बट इट वॉज एब्सोल्युटली अ बाबा मिलन। ओम शांति।
धन्यवाद प्रतिभा बहन। अभी समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हम इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। अनुभव तो आप सबके दिलों में बहुत है। अंत में मंच पर तो हमारी बड़ी दीदियां बैठी हुई हैं, श्रीकांत भाई जी बैठे हुए हैं। दिल तो करता है कि सबको सुने लेकिन समय ना होने के कारण सबकी तरफ से हम आदरणीय अलका दीदी जी से अनुरोध करेंगे कि दो मिनट में आप अपनी सुप्रेरणाएं आगे के लिए हम सबको दें, अपना मार्गदर्शन। आदरणीय अलका दीदी जी।
ओम शांति। बाबा की सुंदर बगिया और उसमें आए हुए सब खुशबूदार फूल और सभी ने अपने अपने सुगंध जो इस ज्ञान सरोवर के परिसर में फैलाई है, तो इसलिए सबसे पहले तो आने वालों का स्वागत तो हुआ है लेकिन सबको आने की बधाई भी है, धन्यवाद भी है। और विशेष ज्ञान सरोवर निवासी जो हम सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स वाले हमारे लिए सेवा में तत्पर है, उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में विशेष आदरणीय अंबिका दीदी जी, श्रीकांत भाई जी, जिन्होंने ये संकल्प किया कि हमें यहाँ पर विशेष सभी बाबा के बच्चों को रिफ्रेश तो कराना ही है लेकिन आने वाले समय के अनुसार सभी को शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। तो इसी लक्ष्य से ये भर्ती हम सभी ने अटेंड की और समय के अनुसार जैसे आज सभी भी अपने अनुभव सुना रहे थे, तो संसार में एक अलग अलग प्रकार के भय का वातावरण बना हुआ है और इस भय के वातावरण से परे जाने के लिए हम सभी ने बाबा का साथ अपने साथ लिया हुआ है और यही साथ का निरंतर अभ्यास करना इस समय की मांग है कि हम एक पल भर के लिए भी अपने आप को बाबा से अलग न होने दें। अगर किसी पल हम अलग हो जाए और उसी पल कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर जो आपदाएं आ जाएगी उसका जिम्मेवार बाबा नहीं रहेगा। तो ऐसा ये समय अभी हमें इशारा दे रहा है कि अब सब बातों को छोड़ो, सब संकल्पों को त्यागो और अपनी ऐसी स्व की स्थिति बना लो कि बस मैं बाबा से कभी भी अलग न हो सको, कोई भी संकल्प मुझे बाबा से दूर न करे। तो इतनी परहेज इस भट्टी से सब लेकर के जाए कि हम निरंतर कैसे बाबा के संग में रहे, संग तो रहते भी हैं और बाबा के बन के भी चल रहे हैं, कई वर्षों से हाथ और साथ पकड़ के चल रहे हैं लेकिन समय का इशारा हमें ये विशेष सावधानी दे रहा है। और जैसे ज्ञान सरोवर में आए तो ये एक सरोवर एक साकार में जैसे सूक्ष्म वतन बन चुका है, इसका हमने सहज सभी ने अनुभव भी किया और ये एक तपस्या की भूमि जिसने हमारे लिए पहले से ही यहाँ पर वो वाइब्रेशन वो वातावरण सारे तैयार थे आत्मा को शक्तिशाली बनने के लिए, जैसे बाबा ने पूर्व तैयारी करके रखी थी और हम सभी ने इसका जब पूरे पूरा लाभ लिया है तो ये भी हम सभी का भाग्य है। तो आगे के समय के लिए भी हम यही सोचेंगे कि बाबा के साथ रह करके हमें अभी निडर बन करके रहना है, कई प्रकार की डर वाली बातें, भय वाली बातें संसार में आने वाली हैं, और समय के अनुसार बाबा ने भी अपना इशारा दिया हुआ है कि आजकल बाबा अपने आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे के कार्य के लिए बाबा वतन में भी बहुत व्यस्त है। तो जैसे बाबा ने बीच में एक संदेश भेजा था, और संदेश सभी ने मधुबन का ही सुना होगा, जिसमें बाबा ने कहा कि आजकल बाबा वतन में दादियों के साथ विशेष प्लानिंग में बिजी है। तो जैसे हम देखते हैं कि बाबा जब अपने आगे के कारोबार में अपने पूर्वज दादियों के साथ सब दादियों को वतनवासी बना करके बाबा ने जो अपनी अगली कारोबार शुरू की है, तो उसमें बाबा की मदद जो लेने का समय है वो भी हमें नजर आ रहा है कि बहुत थोड़ा सा रहा है। बाबा अपने कार्य में जब बिजी हो जाएंगे तो हमारे लिए जो संगमयुग का विशेष जो टाइम बाबा ने दिया था वो टाइम हमारे लिए बहुत थोड़ा सा रहा हुआ है। ऐसे कई इशारे तो सूरज भाई की क्लासेस में हम सब सुन ही रहे हैं, लेकिन यही इस भट्टी के बाद सभी को कहना है कि आप सभी अपने पुरुषार्थ पर ऐसे ही सदैव रहना, और यही लक्ष्य रख करके अपने आप को सदैव स्वस्थिति में स्थित होकर के रखना, क्योंकि अवस्था ही यही हमारे लिए सबसे बड़ा भी उपहार है। बाकी सब बातें तो अब कोई गिनी नहीं जाएगी, लेकिन अभी विशेष महत्व जो है वो हमारी स्थिति का है। तो सभी यहाँ से जाने के बाद भी अपनी स्थिति पर बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी अवस्था को किसी भी कारण से अभी विचलित न होने देना, यही इस भट्टी का उपहार आप सभी अपने साथ लेकर के चलेंगे। ओम शांति।